नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।